प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत।
हमारे आज के श्रोता साथी हैं दसरंगी भाटापारा के हीरा मणि वर्मा और इनसे बातचीत कर रहे हैं सुनील छिपड़े।
नमस्ते अर्पण रेडियो का कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता है और आज हमारे साथ हैं दसरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा। हीरामणि जी, कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता में आपका स्वागत है।
हिम्मत न हार, गिर कर ओम शाफी, कदम से कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी पथ छूनेगी आज नहीं तो कल। आप शिद्दत से करो कोशिश चराग बनने की, कौन जाने तुम ही से रोशन कल सारा जहां। हरपा रेडियो सुनने वाले सभी सुधीर श्रोताओं को हीरामणि वर्मा का गुलाब की भीनी भीनी खुशबू में सब प्रेम नमस्कार।
क्या बात है, आपका अंदाज ही अलग है। तो हीरामणि जी, सबसे पहले जब चूंकि हरपा रेडियो का जिक्र आपने छेड़ा है तो सबसे पहले बात हमारी अपनी आपके हमारे रेडियो स्टेशन हरपा कम्युनिटी रेडियो और हरपा वेब रेडियो की ही कर लेते हैं। कैसा लग रहा है हरपा रेडियो?
हरपा रेडियो कार्यक्रम में सर जब से केंद्र चालू है तब से सुन रहा हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहता है, उपयोगी कार्यक्रम रहता है, स्वास्थ्य मनोरंजन करता है, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, साहित्य से संबंधित जानकारी, हर तरह की जानकारी अवेलेबल कराता है। बहुत अच्छा लगता है सर।
ये जो नया पैटर्न है रेडियो का, वेब रेडियो और कम्युनिटी रेडियो, ये किस तरह से देखते हैं? मतलब पहले एक बड़े रेडियो स्टेशन हुआ करते थे जिसे हम ट्रांजिस्टर रेडियो या मोबाइल में भी सुनते थे, लेकिन ये सारा चीज अब बदल रहा है मीडिया का, तो इसको कैसे देख पा रहे हैं इन दिनों?
कम्युनिटी रेडियो का एक अच्छा ये है सर कि ये स्थानीय श्रोताओं को अच्छे तरीका से जोड़ने का काम करता है। स्थानीय श्रोताओं को अच्छे कम्युनिटी रेडियो में जोड़ता है और अपनी स्थानीय चीज को एक अच्छे तरीके से डिजिटल माध्यम से जन समुदाय तक पहुंचाने का कार्य करती है सर कम्युनिटी रेडियो। और रेडियो एक बड़े ट्रांजिस्टर हुआ करती थी, अब एंड्रॉइड मोबाइल में दुनिया भर की रेडियो को हम सुन सकते हैं सर। जहाँ भी सर्वर का सही हो, डिजिटल रूप में हम बैठ के इसको कहीं से भी सुन सकते हैं।
क्या बात है, वाकई ये संचार क्रांति है, संचार क्रांति का परिणाम है कि अब हम पूरे दुनिया भर के रेडियोस को अपने एंड्रॉइड मोबाइल में सुन सकते हैं। और
यस सर,
पूरे दुनिया भर के रेडियो के बीच अर्पा रेडियो की अपनी जगह है, अर्पा रेडियो सुनने वालों के दिलों में हमारी अपनी जगह है। इसके लिए तमाम सुनने वालों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे छोटे से रेडियो स्टेशन को आपने अपने दिलों में जगह दी है, आप सुनते हैं, आप हमारे लिए समय निकालते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आभार के साथ ही सप्ताह के श्रोता हैं हमारे और हीरामणि जी से बात हम आगे करें और ये जानना चाहेंगे हीरामणि जी कि आप क्या करते हैं।
सर मैं अभी वर्तमान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर डीजल के तिल्दा सेक्शन में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियरिंग गेट में संपर्क फाटक लेवल क्लासिंग में कार्यरत हूँ 22/7/2013 से।
अच्छा, 2013 से?
यस सर।
अच्छा, मतलब आपके अभी सर्विस को कहना चाहिए कुछ साल हुए?
7-8 साल हो गए सर।
7-8 साल हुए, वाह।
यस सर,
ये मतलब कहते हैं ना कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और देश के कोने कोने को भारतीय रेल जोड़ती है और उस भारतीय रेल में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो भी संपार पाठक में।
यस सर,
ये संपार पाठक जो होता है वो किस तरह जरूरी होता है पूरी रेलवे की संचार प्रणाली में, रेलवे की आवाजाही में, इसका कितना महत्व होता है?
संपार फाटक का लेवल क्रॉसिंग का भारतीय रेलवे में बहुत बड़ा योगदान है सर। और ये तो ट्रेन से आने जाने वालों के लिए और अपना जो रोड ट्रैफिक होता है जो एक जगह से दूसरे जगह फाटक क्रॉस करके आने जाने वाला होता है, दोनों के बीच में ये संपार फाटक महत्वपूर्ण स्थान रखता है सर। ट्रेन आने के दौरान फाटक बंद रहती है, जब ट्रेन पूरी तरह से गुजर जाती है तब फाटक खुलते हैं, फिर लोग आवागमन सुरक्षित रूप से करते हैं, तो उसमें दोनों की जान माल के नुकसान ना हो, ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है इस फाटक में।
वाकई आवाजाही में किसी की जान ना जाए, इसलिए वो एक महत्वपूर्ण बैरियर है जिसका संचालन आप करते हैं।
यस सर,
है ना। तो मुझे ये जानना चाहेंगे हम या श्रोताओं तक पहुँचाना चाहेंगे ये बात की आपके संपार फाटक से ट्रेन गुजरने के कितने देर पहले, गुजर जाने के कितने देर बाद आप वो जो आपका क्या कहते हैं उसे, आप बैरियर जिसे लगाते हैं,
यस सर,
गेट जो होता है, कितने देर पहले गेट बंद होना चाहिए और कितने देर बाद गेट खुलना चाहिए?
ट्रेन आने से हम स्टेशन मास्टर से सीधे नियंत्रण में रहते हैं सर, हर मोमेंट की जानकारी हमें स्टेशन मास्टर देते रहते हैं फोन के माध्यम से। ट्रेन आने से 10 से 20 मिनट पहले हमारी फाटक पूरी तरह से बंद हो जाती है।
अच्छा।
और ट्रेन गुजरने के बाद हमारे जो सिग्नल है वो मतलब वो ओपन हो जाता है सर, तो सिग्नल उठने के बाद ना स्टेशन मास्टर हमें चाबी देता है गेट खोलने के लिए। जब सेक्शन से गाड़ी पूरी तरह से क्लियर हो जाता है तब फिर हम गेट खोलते हैं और ट्रैफिक सुरक्षित अपने गंतव्य के लिए पास होता है सर।
अच्छा, आपका जो गेट खोलना है मतलब टेक्निकली ऐसे जुड़ा हुआ है कि जब तक स्टेशन मास्टर आपसे नहीं कहेगा या कोई बटन रिलीज नहीं करेगा तब तक ये गेट आप नहीं खोल सकते?
नहीं खोल सकते सर।
अच्छा, और कई बार आपको इस तरह से लोगों का गुस्से का शिकार होना पड़ता होगा, ये ट्रेन तो दिखाई नहीं दे रही, ट्रेन तो चली गई, खोल क्यों नहीं रहे?
ये होता है सर, फाटक कई बार हमारे मल्टीपल लाइन है सर, 3 लाइन है, मुंबई हावड़ा रूट है, तो जाहिर सी बात है ट्रेन का बहुत सारे दबाव है सर, कोचिंग ट्रेन का दबाव है, मालगाड़ी का दबाव है और ऊपर से पूरा रोड ट्रैफिक का भी दबाव है आवाजाही करने वालों का, तो कभी कभी तीनों लाइन में गाड़ी होने की वजह से ट्रैफिक वाले खड़े खड़े बोर हो जाते हैं।
हाँ।
तो गेट में तो बोलते हैं भैया गाड़ी तो नहीं दिख रही, गेट क्यों नहीं खोल रहा है, अभी तो एक गाड़ी निकल के गेट क्यों नहीं खोल रहा है, ऐसे करके। तो हम उनको समझाते हैं कि भैया अभी गाड़ी है और गाड़ी आ रही है, स्टेशन मास्टर ने हमें आदेश नहीं दिया है गेट खोलने के लिए, तो हम गेट नहीं खोल रहे हैं, ऐसे करके। तो बहुत सारे पब्लिक समझते हैं इस बात को कि भाई ये जो ड्यूटी कर रहे हैं वो जब भी ट्रेन है इनको आदेश नहीं मिला तभी ये गेट नहीं खोला है, आदेश मिलेगा तब ये गेट खुलेगा, ऐसा करके बहुत सारे पब्लिक समझते हैं और कुछ कुछ नहीं समझते हैं। तो उनके लिए हमारे पास आरपीएफ ऑन ड्यूटी में रहता है, वो उनको अच्छी तरह से समझा देते हैं, तो बिल्कुल वो समझ जाते हैं सर कि हाँ ये बात है इसलिए नहीं खुल रहा है, ऐसे करके।
जी 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 बिल्कुल, आरपा रेडियो के माध्यम से ये कहना चाहिए कि इस संपार फाटक के जो कंट्रोलर हैं और जो सड़क के यातायात हैं उनके बीच आरपीएस की जरूरत ना पड़े, इसलिए हम सब मिलकर के कोशिश करें, हम जितने आरपा रेडियो को इस समय सुन रहे हैं या इस कार्यक्रम को जब भी सुनेंगे उनसे अनुरोध है कि जब भी आप संपार फाटक में रोड पर खड़े रहें तो वाकई इंतजार करें, अगल बगल से निकलने की कोशिश न करें, नीचे से गाड़ी झुका करके पार करने की कोशिश न करें, कई बार बैक टू बैक लगातार गाड़ियां रहती है अलग अलग, है ना, उसमें संपार फाटक को जो कंट्रोल कर रहे हैं उनकी कर्तव्य परायणता सर्विस मैनुअल को समझें और सहयोग करें, वो हमारी जान माल की रक्षा के लिए ही वहां पर है, इस बात को समझें। और यदि सड़क की भीड़ में जो लोग वेट कर रहे हैं, चाहे धूप में हो चाहे बरसात में हो चाहे ठंड में हो, यदि वहाँ कोई न्यूसेंस पैदा होता है कि जल्दी खोलो क्यों नहीं खोल रहे हैं, तो हम आपस में वहीं के वहीं लोग आपस में एक दूसरे को समझाएं कि भाई वो व्यक्ति अपनी ड्यूटी कर रहा है और हमारी जान की रक्षा के लिए ही कर रहा है। तो हम तमाम सुनने वालों को ये अनुरोध करना चाहेंगे कि हीरामणि वर्मा जी की तरफ से ये समझाइश किसी भारत के किसी भी फाटक में आप संपार फाटक में खड़े हो ये जरूर अप्लाई करें और वहाँ का माहौल ठंडा बनाए रखें ताकि कोई भी गुस्से में किसी भी प्रकार की अनहोनी ना होने पाए। तो हीरामणि जी वाकई ये बहुत जरूरी जानकारी आपने हम तक पहुँचाई है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके ड्यूटी आवर्स किस तरह से होते हैं, मतलब सुबह शाम की ड्यूटी होती है या शिफ्ट होती है?
हाँ सर, 3 शिफ्ट में हम लोगों की ड्यूटी होती है, एक दिन ड्यूटी होता है सुबह 8 से शाम 4 बजे तक और 4 बजे के बाद फर्स्ट मैच चालू होता है शाम 4 से रात 12 बजे तक, उसके बाद चालू होता है रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक, 3 शिफ्ट में ड्यूटी होता है सर।
चलिए, तो वो शिफ्ट के हिसाब से लगातार कभी रात की भी शिफ्ट होती होगी कभी सुबह सुबह की भी होती होगी, तो मुस्तैदी से आपको वहाँ होना पड़ता है।
यस सर, बहुत सतर्कपूर्ण ड्यूटी है, बहुत ड्यूटी में अलर्ट रहना पड़ता है और मैं तो सभी श्रोताओं से कहता हूँ बंद फाटक के नीचे से कभी भी पास होने की कोशिश ना करें।
जी
यस सर,
जी जी बिल्कुल, बहुत जरूरी जानकारी। और एक छोटी सी जानकारी और जानना चाहेंगे कि आपके संपार फाटक जो कंट्रोल रूम होता है फाटक वहाँ अमूमन कितने लोगों की ड्यूटी हुआ करती है?
हम लोग ड्यूटी में दो लोग रहते हैं सर, और स्टेशन मास्टर के पास 3 से 4 लोग रहते हैं।
अच्छा, और भारत की कई जगहों में आज भी जो है मतलब फाटक जो है नो मेंस वाला रहता है, मतलब कोई आदमी क्या कहते हैं उसे टेक्निकली
अनमेंडेड लेवल क्रॉसिंग कहते हैं, मानव रहित
प्रेजेंस, मानव रहित, जी 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 जी, तो वो भी होता है, तो वहाँ यदि लोग हो तो किस तरह की सावधानी रखें लोग?
जब सर ये मानव रहित रेलवे फाटक है वो अब गवर्नमेंट उसको धीरे 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 बंद करते जा रहा है भारत में, और जहाँ पर मानव रहित रेलवे फाटक आज भी है तो वहाँ पर जैसे लोग फाटक क्रॉस करते हैं तो उनको सबसे पहले रेलवे लाइन से बाहर होके ट्रेन की आवाज को सुन लेना चाहिए, क्रॉस करने से पहले, फाटक पार करने से पहले कहीं ट्रेन की आवाज तो नहीं आ रही है, दूर दूर तक देख लेना चाहिए कि कहीं ट्रेन इधर से तो नहीं दिखाई दे रही, इधर से तो नहीं दिखाई दे रही। जब ट्रेन दिखाई नहीं दे रही है, आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तब उनको फाटक पार करना चाहिए।
बिल्कुल सही बात आपने कही है, और धीरे धीरे सरकार तो कोशिश कर रही है, रेलवे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो इस तरह के फाटक हैं उन्हें दुरुस्त कर दिया जाए, वहाँ पे कोई कंट्रोलर रहे, कोई संपार फाटक को एक्टिवेट करने वाला और डीएक्टिवेट करने वाला व्यक्ति वहाँ पे रहे। जब तक ये सारी चीजें दुरुस्त नहीं होती तब तक हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सावधानी रखें। सप्ताह के श्रोता में हमारे मेहमान है दतरेंग की भाटा पारा से हीरा मणि वर्मा, और बहुत जरूरी जानकारियों के साथ इन्होंने संपार फाटक को डिटेल से बताया है, और आगे भी हम बात करना चाहते हैं। रमणी जी, थोड़ी देर हम चाहते हैं कि रेलवे पर ही टिके रहे, क्योंकि बहुत बड़ा जाल है रेलवे का और बहुत जरूरी साधन है आज भारत का। तो ये बताइए कि अमूमन जो आप रायपुर ट्रैक पर हैं तो दिन भर में कितनी गाड़ियों की आवाजाही होती है?
दिन भर में सर 8 घंटे की हमारी ड्यूटी में 90 से 95 ट्रेन निकल जाती है।
बाप रे।
यस सर।
मतलब यदि 3 शिफ्ट में ये गाड़ी 90-90 का एक एवरेज मान ले तो करीब करीब मतलब 270-250 के लगभग ट्रेनें की आवाजाही होती है दिन भर।
यस सर। कोचिंग ट्रेन और यात्री गाड़ी और माल गाड़ी दोनों मिला के इतनी तो ट्रेन निकल ही जाती है सर। यस सर।
मतलब लगभग ये आंकड़ा 300 को छूता है।
यस सर।
वाकई देखिए हम श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि एक ट्रेन की देरी या एक ट्रेन की जल्दी आ जाने की बात या संपार फाटक में खड़े होकर के एक ट्रेन क्रॉस करने के लिए हमारा इंतजार, उसके लिए हम कितने विचलित हो जाते हैं। सोचिए इस पूरे ट्रैक में रायपुर बिलासपुर के सारे उस पूरे बॉम्बे हावड़ा ट्रैक में 300 गाड़ियां एक संपार फाटक से क्रॉस होती है लगभग।
यस सर। ये मुंबई हावड़ा मेन रोड है सर, और यहाँ 3 लाइन है, मल्टीपल लाइन है, तीनों लाइन में गाड़ी बिल्कुल चलता है सर।
वाह क्या बात है। हीरामणि ये बताइए कि ऐसी कोई घटना जो आपको याद रह गई हो, याद हो इस पूरे सर्विस के दौरान संपार फाटक की, क्या आप याद कर पाते हैं?
अभी 22/8/2013 से सर मैं नियमित तौर पर ड्यूटी में हूँ, गवर्नमेंट के पास पर कार्यरत हूँ, और मेरी ड्यूटी पर अभी तक की जान माल का हादसा नहीं हुआ सर। यस सर। और मैं तो फाटक में ड्यूटी में आन ड्यूटी में रहता हूँ, फिर भी ट्रैफिक वालों को समझाइश देते रहता हूँ कि सर आप लोग थोड़ा 5 मिनट वेट कर लीजिए सर, गाड़ी गुजरने के बाद गेट खुल जाएगा, आप उसके बाद सुरक्षित पास हो जाइए, ऐसे करके लोग इसको मानते हैं, जागरूक है, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत से लोग समझते हैं इस बात को।
चलिए ये जागरूकता बनी रहे, और आपका जो प्रयास है, आप मानवीय तौर पर जो प्रयास करते हैं लोगों को समझाने का, उसके लिए पूरे अरपा रेडियो की टीम और पूरे अरपा रेडियो के श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। बताइए कि रेडियो से आपका लगाव कैसे है?
रेडियो से लगाव तो वैसे बचपन है सर, घर में ही रेडियो सुना हूँ, बचपन से घर में रेडियो का माहौल ही रहा है, तो बचपन से ही रेडियो से ही जुड़ा हूँ घर में। अब हमारे गांव में ऐसा है सर कि घरों घर मतलब एक रेडियो था, हर घर में रेडियो था, घर ही नहीं था, बिल्कुल रेडियो था। मैं बचपन में देखा हूँ, अपनी आंखों में देखा हूँ, और लोग ना बिल्कुल 20 लोग 25 लोग 15 लोग 20 लोग इस तरह से बैठ बैठ के चौक चौक में ना बीड़ी बनाने का काम करते थे और रेडियो सुनते रहते थे सर। तो उसको देखा होता तो घर में मेरे यहाँ भी रेडियो थे तो धीरे धीरे मतलब मैं भी बढ़ते गए तो बोला रेडियो चालू करके देखा ये सब तो अच्छा लगा तो रेडियो से ही जुड़ गया सर।
वाकई आपने बहुत पुरानी तस्वीर हमारे सामने रख दी है, बहुत जरूरी जानकारी कि लोगों के घर में घड़ी नहीं होती थी लेकिन रेडियो होता था और रेडियो की टाइमिंग से वो अपना टाइमिंग मैच करते थे। कई दफ्तर जाने वाले लोग, कई डेली पैसेंजर जो होते हैं वो लोग, फिर जाने वाले लोग, रेडियो बजते रहता था, उन्हें टाइम का अंदाजा होते रहता था। अच्छा 7:10 हो गया, 7:20 हो गया, मुझे निकल जाना चाहिए, मुझे नाश्ता कर लेना चाहिए, मुझे टिफिन बांध लेना चाहिए, ये तमाम प्रोग्राम के सीक्वेंसिंग के हिसाब से उनकी दिनचर्या शुरू होती थी। गाय मतलब जो गुड़ी है, चौपाल है और काम की जगह है, जैसे आपने बताया कि बिड़ी बनाने की जगह पर सब लोग बिड़ी बनाते हुए रेडियो सुना करते थे। ये एक सामुदायिकता रेडियो की है ना कि लोग सब एक साथ बैठ करके अपनी अपना काम करते हुए, अपनी बातचीत करते हुए रेडियो का आनंद लेते हैं।
बस रेडियो एक ऐसा चीज है सर जिसको आज के समय में हम सब परिवार सुन सकते हैं एक जगह बैठ कर सर। ये रेडियो की विशेषता है और रेडियो से काम में व्यवधान नहीं होता, ये इनकी महत्वपूर्ण गुण होता है सर। किसी भी काम को करते रहो रेडियो आपका बिल्कुल न केवल इसलिए मनोरंजन करता है बल्कि हमारा स्वस्थ मनोरंजन करता है। आपके काम में जरा सा भी व्यवधान नहीं होता है सर। मेरे गांव में बकायदा चौक चौक में बहुत से श्रोता यहाँ देखने के लिए आते थे कि कैसे यहाँ लोग 20-25 लोग बैठ के बीड़ी बनाते हैं और रेडियो सुनते रहते हैं और बकायदा उसमें हर बार एक कार्यक्रम समाप्त होने के बाद समय बताया जाता था, लोग जान जाते थे नहीं आप हमारा ड्यूटी आप करने का टाइम हो गया ऐसा करके। तो ये हमारे जतनी में एक बहुत ही जबरदस्त माहौल रहा है सर रेडियो का।
क्या बात है, वाकई मतलब भारत के हर रेडियो स्टेशन से दतरेंगी भाटापारा का नाम आते ही रहता है। उसमें कई नाम आपके परिवार के हैं, कई नाम आसपास के हैं। भाटापारा एक बड़ी जगह है रेडियो सुनने वालों की और बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है तमाम रेडियो स्टेशन पर आपकी चिट्ठियों का, आपके ईमेल का, आपकी बातचीत का। हीरामणि वर्मा जी हमारे साथ है, आज के हमारे खास मेहमान है और दतरेंगी में आप रहते हैं। वाकई अर्पा का बहाव यूं ही बना रहे, आपके दिलों तक पहुंचती रहे अर्पा रेडियो की ये फ्रिक्वेंसी और लोगों तक आप पहुंचाते रहे, ये गुजारिश हमेशा हमेशा आपसे है। तो हीरामणि जी
सर,
क्या क्या शौक है आपके?
सर शौक है रेडियो सुनना, पढ़ाई करना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना और प्रश्नोत्तरी क्रम में भाग लेना और प्रसिद्ध हस्तियों का इंटरव्यू करना खाली टाइम में, सर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है।
क्या बात है, वाह, मतलब प्रसिद्ध व्यक्तियों का इंटरव्यू सुनना आपको आपको क्यों लगता है कि हाँ इनकी बातचीत हमें सुननी चाहिए?
जितने भी प्रसिद्ध हस्ती है सर जो एक निचले दर्जे से उच्च दर्जे तक स्थान प्राप्त किया है उनके जीवन के संघर्ष को सुनकर बहुत प्रेरणा मिलता है सर।
क्या बात है,
हाँ उससे बहुत प्रेरणा मिलता है सर। फिर उनको सुनने से अपने अंदर एक हौसला आता है कि मैं भी ये करूं, मैं भी ऊपर बढ़ूं, ये बहुत प्रेरणा मिलता है। आज जितने भी व्यक्ति महान होते हैं उनके जीवन में कहीं न कहीं महत्वपूर्ण संघर्ष रहा है, वो इंटरव्यू में जानकारी सुनने को मिलता है सर। वो कहीं मुझे अंदर से एक रोशनी देता है कि मैं भी क्यों ना आगे बढ़ूं, क्यों ना पढ़ाई करूं, ये बहुत प्रेरणा देता है इंटरव्यू सर। और जितने भी मैं इंटरव्यू वगैरह सुनता हूँ कोशिश करता हूँ वो रेडियो से सुनने की कोशिश करूँ और रेडियो से बाय द वे नहीं सुन पाता हूँ तो उसको इंटरनेट के माध्यम से सर्च करके खाली टाइम में उस इंटरव्यू को जरूर सुनता हूँ मैं।
वाकई आपकी बातचीत से हमें बहुत जरूरी बात सीखने को मिली कहना चाहिए, वो हम भी सीख रहे हैं आज कि तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों के प्रेरक लोगों के इंटरव्यू सुनना चाहिए क्योंकि लोग अपने बारे में बहुत सारा बखान तो करते ही हैं, बहुत सारा लिखा हुआ होता है जो खुद कहते हैं, लेकिन इंटरव्यू के दौरान जब इंटरव्यूअर जो पूछने और सवाल करने वाला व्यक्ति है वो बहुत तरीके से बहुत सारी आपके भीतर की चीजें बाहर निकाल लाता है बिल्कुल, अलग तरीके से आदमी उसमें पेश होता है, अलग तरीके से जानकारियां प्रस्तुत करता है। ये सीखने वाली बात आज हमारे लिए रही, ये आपके साथ बातचीत का हासिल रहा हमारे लिए, और तमाम श्रोताओं को भी हम कहना चाहेंगे कि वाकई लोग प्रेरक लोगों की बातचीत सुनना बहुत जरूरी है, और यह बिल्कुल रुकना तो कभी भी नहीं चाहिए, और ये सफर जारी रहे, हरपा रेडियो का सफर जारी है, और सप्ताह के श्रोता हीरामणि जी हमारे साथ हैं बहुत सारी अच्छी जानकारियों के साथ, बहुत सारी प्रेरक बातचीत के साथ। ऑफलाइन भी कुछ बातें होती है सप्ताह के श्रोता में जो मेहमान होते हैं उसमें, हमें हीरामणि जी से ये जानने को मिला था कि आपने कभी दौड़ में भाग भी लिया है, कुछ खेल से भी संबंधित रहे।
हाँ सर, ये खेल तो संबंधित उतना खेल में रुचि नहीं रखता था, बाकी ये रेलवे में जब मेरी भर्ती हुई, भर्ती प्रक्रिया के दौरान हम लोगों को फिजिकल टेस्ट होना था।
अच्छा,
तो वो दौड़ मेरा उसी वही में था, और दौड़ में मैं प्रथम स्थान प्राप्त किया था, और वो दौड़ ऐसा था कि नागपुर में मेरा दौड़ हुआ था सर, नागपुर रेलवे स्टेशन के सामने में एक बर्डी स्टेशन है, बर्डी स्टेशन के सामने में वहाँ पर एक बटालियन का रहता, 118 इन्फेंट्री बटालियन है, वहाँ बटालियन में हम लोगों के लिए दौड़ रखा गया था, ग्राउंड था वहाँ पर। तो वहाँ ऐसा था कि 1500 मीटर आपको दौड़ना है 7 मिनट में।
अच्छा, 7 मिनट में 1500 मीटर
दौड़ना था, और उस दौड़ के ग्राउंड को इस तरह बनाया गया था कि बहुत ही रेतीला जगह था सर वो, और उसको राउंडेड किया गया था, 1500 मीटर को गोल का राउंड बनाया गया था, और उस गोल के राउंड में सिर्फ 3 मीटर चौड़ा थे, और एक राउंड में 20 लड़कों को दौड़ाया जाता था, उसको चार चार के ग्रुप में दौड़ाया जाता था, 3 मीटर चौड़ा था और चार चार के ग्रुप में दौड़ाया जाता था। तो भाई लड़के लोग, मैं आगे रहूंगा तो मैं आगे दौड़ूंगा, ऐसे करके सब आगे आगे में खड़े हो गए, और सबसे पीछे में मैं खड़ा हो गया सर। तो वहाँ एक बहुत सारे नियम थे कि किसी को आपको टच नहीं करना है, क्रॉस लाइन को टच नहीं करना है, और आपको किसी को बिना धक्का वक्का दिए आपको उस सही समय में आपको अपनी दौड़ पूरी करनी है।
अच्छा।
ये सर का था, बहुत सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, ड्रोन से निगरानी किया जा रहा था, ये सब बहुत सारे थे सर। तो भाई मैं सबसे पीछे में था, 20 लड़कों की कतार में सबसे पीछे में मैं था, और मेरे को सबसे आगे दौड़ना है, सबसे आगे निकलना है, ऐसे करके एक जोश था, जुनून था, और पूरी रेतीली जमीन में हमको राउंड दौड़ना था सर 1500 मीटर। तो अब कैसे करे जाए, मेरा 3 महीने का प्रैक्टिस था सर दौड़ का, बिल्कुल घर में प्रैक्टिस करता था मैं, 3 महीने का मेरा प्रैक्टिस था।
जी जी
हाँ, तो फिर मैं तो मेरा अनुभव था सर दौड़ने का, 3 महीने तक लगा था और दौड़ा, फिर वो मेरा दौड़ वो मेहनत बिल्कुल कुछ दिन रंग लाया सर, जैसे और जितने भी थे ऑफिसर लोग सबको हौसला अफजाई करते थे कि तो आप लोग यहाँ तक आ गए हो, मेहनत कीजिए, आपका स्वागत है भारतीय रेलवे में, ऐसे करके हर एक को हौसला देते थे सर। तो मैं वहाँ सबसे पीछे में था, 20 लड़कों की कतार में सबसे पीछे में था, और 19 लड़के मेरे सबसे आगे थे सर। तो फिर जैसे ही यहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ सर, तो फिर मेरा राउंड टू राउंड ऐसे चालू हुआ, बिना किसी को धक्का दिए, बिना किसी को टच किए, और बाकायदा नियम था मैं 1500 मीटर को 5 मिनट 45 सेकंड में पार कर दिया था सर।
क्या बात है, क्या बात है, मतलब दौड़ना, तेजी से दौड़ना तो है ही, लेकिन आपको किसी से टकराना नहीं है, किसी छूना नहीं है, किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना।
यस सर, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सब ऑफिसर लोग मेरी तारीफ किए कि 7 मिनट के टाइम को आपने 5 मिनट 40 सेकंड में पूरा पार कर लिए, बिना किसी को धक्का दिए, बिना किसी को टच किए, बिना क्रॉस लाइन को टच किए, ऐसे करके सब ऑफिसर लोग स्वागत किए, ताली बजाए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। उस पल को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, और उसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया था, 3 महीने तक लगातार प्रैक्टिस किया था, मेरा प्रैक्टिस उस दिन रंग लाया सर, बहुत खुशी हुआ मुझे, उस पल को मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। आपको और अर्पा रेडियो के साथ इस चीज को साझा करते हुए मैं अपनी नजर में उस पल को बिल्कुल आंखों में देख रहा हूँ सर।
बिल्कुल, आप जिस भावना से बता रहे हैं वो तमाम एक्सप्रेशन हमारे पास पहुँच रहे हैं, आप जैसे बताने से वो सारे चित्र हमारे सामने निकल के आ रहे हैं कि सबसे पीछे खड़ा है व्यक्ति तेजी से भागता हुआ रेस जीतता है। वाकई इस जीत पर हम रेडियो से कहने वाले और रेडियो सुनने वालों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। और आप जो सर्विस कर रहे हैं, आपकी अपनी मेहनत के बूत आपने ये नौकरी पाई है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई है। और चलते चलते एक जानकारी और जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके अपनी नौकरी पाई है।
यस सर,
आरपा रेडियो जो सुन रहे हैं, जो युवा हैं उन्हें भी, और जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं जो सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि यदि इस तरह की परीक्षा की तैयारियां यदि किसी को करना है तो फिजिकली कैसे रेडी होना है और पढ़ाई के तौर पर किस तरह से तैयारी करनी है?
हाँ सर, ये मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तो सर अपना रेडियो से ही सुन सुनकर मैं अपना सेल्फ स्टडी किया हूँ। रेडियो सुनकर नोटबुक तैयार करता था, फिर मैं उसको पढ़ाई करता था। रेडियो से ही मैंने कुछ अंग्रेजी सीखा सर, और उन्हीं रेडियो के माध्यम से सेल्फ स्टडी करके, अखबारों से जानकारी करके फिर मैं पढ़ाई करता था। और जैसी वैकेंसी मिला उसके बारे में मेहनत किया, उसके बाद हो गया। तो आज का जनरेशन है और आज का पढ़ाई लिखाई है और जो नौकरी की मतलब तैयारी करना है प्रतियोगी परीक्षाओं का, तो वो आजकल बदल गया है धीरे से, एक डिजिटल रूप में हो गया है पढ़ाई का, कोचिंग सेंटर ही है। तो आप उस तरीके से सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कीजिए और जैसे जैसे उसमें है उस हिसाब से आप अपना तैयारी करते रहिए सर।
और इस तरह की नौकरियों में फिजिकल आपका टेस्ट बहुत जरूरी होता है, फिजिकल तैयारी के लिए आपकी क्या सलाह होगी?
फिजिकल तैयारी के लिए सर इसमें जो सिलेबस में बताया जाएगा, तो आपको उस जिस स्थिति को आपको फिजिकल टेस्ट होना है उससे पहले आप लगातार मेहनत करते रहिए। और जिस दिन आपका फिजिकल टेस्ट होगा आप मेहनत करना है, उस दिन उसको आपका अच्छा परिणाम मिलेगा।
चलिए, और सतरंगी भाटापारा से हमारे साथ ये जुड़े रहे हमारे आज के खास मेहमान थे हीरामणि जी, कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता में। हीरामणि जी, आपने इस कार्यक्रम के लिए अर्पा कम्युनिटी रेडियो और अर्पा वेब रेडियो अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए उन तमाम लोगों को भी।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी, हीरामणि वर्मा जी को एक बार और फिर सबकी तरफ से धन्यवाद देते हैं। और चलते चलते इस नोट पर कार्यक्रम खत्म करना चाहेंगे, इसम पार फाटक में आप जब भी खड़े रहें तो ये माने कि वहाँ जो भी कंट्रोल कर रहे हैं वो आपके जान माल की रक्षा के लिए तयशुदा नियमों के तहत और अपने अधिकारियों के आदेशानुसार वो तमाम प्रक्रिया कर रहे हैं, इसलिए कोई भी हड़बड़ी गड़बड़ी ना होने दे, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जान बहुत जरूरी है और उस जरूरी काम में हमारे हीरामणि जी लगे हुए हैं। आभार, धन्यवाद, नमस्कार।
धन्यवाद सर।
सप्ताह के श्रोता, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे अर्पा रेडियो पर। हमारे आज के मेहमान श्रोता साथी थे रसेंगी भाटापारा के हीरामणि वर्मा और आज उनसे बातचीत के सुनील चिपड़े ने।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।